लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo il ciclo di catechesi che si svolgerà lungo tutto l'anno giubilare.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम आज जयंती वर्ष पर अपनी धर्म शिक्षा माला की शुरुआत करेंगे जो पूरे वर्ष जारी रहेगा। इस धर्म शिक्षा माला का शीर्षक है येसु ख्रिस्त हमारी आशा। वे वास्तव में हमारी तीर्थ यात्रा के लक्ष्य हैं। वे स्वयं जीवन हैं जिनका हमें अनुसरण करना है। इस धर्म शिक्षा के पहले भाग में हम येसु के बचपन की चर्चा करेंगे, जिसका जिक्र हमारे लिए संत मत्ती और संत लूकस के सुसमाचार में किया गया है। कुंवारी को येसु के निष्कलंक गर्भ धारण का संदेश और मरियम के गर्भ से येसु का जन्म, मुक्तिदाता के आने की भविष्यवाणी जो उनमें पूरी होती है, यूसुफ का नैतिक रूप में येसु की परवरिश, जहां हम ईश्वर के पुत्र को दाऊद के घराने टहनी से जुड़ा हुआ पाते हैं, हम येसु को नवजात के रूप में पाते हैं, एक बालक और एक युवा जो अपने माता पिता के अधीन रहते, वहीं वे इस बात से सचेत रहते हैं कि वे पूरी तरह अपने पिता और उनके राज्य हेतु समर्पित हैं। दो सुसमाचार लेखकों के बीच अंतर के फलस्वरूप हम संत लूकस को मरियम की दृष्टिकोण से घटनाओं को प्रस्तुत करता पाते हैं, तो वहीं संत मत्ती इसे यूसुफ के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं, उनके अभूतपूर्व पितृत्व पर जोर देते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, संत मत्ती के अनुसार उनके सुसमाचार की शुरुआत नए विधान में येसु की वंशावली दाऊद के पुत्र अब्राहम से शुरू होती है। हम यहाँ इब्रानी धर्म ग्रंथ में उन नामों को पहले से पाते हैं जो हमारे लिए इतिहास और मानवीय जीवन की सच्चाई को व्यक्त करती हैं।
La genealogia del Signore è costituita dalla storia vera, dove sono presenti alcuni nomi a dir poco problematici e si sottolinea il peccato del re Davide.
वास्तव में ईश्वर की वंशावली हमारे लिए इतिहास की सत्यता को प्रकट करती है, जहां हम कुछ नामों को न्यूनतम रूप में कहा जाए तो समस्या की तरह देखते और जहां राजा दाऊद के पाप पर भी जोर दिया जाता है। सारी चीजें यद्यपि मरियम और येसु ख्रिस्त में अपनी प्रकाष्ठा को प्राप्त करती हैं, इसके बाद हम मानव जीवन की सच्चाई को प्रकट होता पाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, जिसमें हम तीन चीजों को पाते हैं। एक नाम जिसमें एक अद्वितीय पहचान और प्रेरिताई है, जिसका संबंध एक परिवार और एक जाति से है, जो अंत में इसराइल के ईश्वर पर विश्वास से जुड़ा है। वंशावली एक साहित्यिक विधा है, संत पापा ने कहा, अर्थात एक स्वरूप जो एक महत्वपूर्ण संदेश को देने हेतु उपयोग किया जाता है। कोई अपने को जीवन प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह इसे दूसरे से एक उपहार स्वरूप प्राप्त करता है। इस संदर्भ में यह चुनी हुई प्रजा है और वे इसे विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि पुराने विधान की वंशावली के विपरीत, जहां हम सिर्फ पुरुषों के नाम को पाते हैं, क्योंकि इसराइल में पिता के द्वारा बेटे को नाम दिया जाता है, वहीं संत मत्ती के सुसमाचार अनुसार यीशु की वंशावली में नारियों के नाम भी उभर कर आते हैं। यहाँ हम पांच नामों को पाते हैं: तामार, यूदा की पुत्र वधू जो विधवा रह जाती है, जो अपने में एक वेश्या होने का दिखावा करती जिससे वह अपने पति के लिए एक संतान उत्पन्न कर सके, रिकाब जेरिखो की विधवा जो यहूदी खोजकर्ताओं को प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने देती है जो उस पर विजयी होते हैं, रूथ एक मोबाइट नारी जो अपनी सास के प्रति निष्ठावान बनी रहती उसकी देख रेख करती है जो राजा दाऊद की परदादी बनती है, बेतशेबा जिससे दाऊद व्याविचार करता है वह उसके पति को मरवा देता जिसके द्वारा सोलोमोन उत्पन्न होते हैं, अंततः नाजरेत की मरियम यूसुफ की पत्नी जो दाऊद के घराने से आते हैं जिनके द्वारा मसीह का जन्म होता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि पहली चार नारियों में एक बात हम सामान्य पाते हैं, वे पापियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे कि कभी कभी कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ इस बात की सत्यता को पाते हैं कि वे नारियां इसराइल के लिए परदेशी थीं। इसके संबंध में संत मत्ती इस तथ्य को अभिव्यक्त करते हैं जैसे कि संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने लिखा है:
Per il loro tramite entra nella genealogia di Gesù il mondo delle genti.
उनके द्वारा समारियों की दुनिया यीशु की वंशावली में प्रवेश करती है जिसके फलस्वरूप हम यीशु की प्रेरिताई को यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए दृश्यमान पाते हैं, जबकि उन चार नारियों की चर्चा उन पुरुषों के साथ साथ होती है जो उनसे जन्मे या जिनके द्वारा पुरुष का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर मरियम को हम एक विशेष महत्व दिया जाता हुआ पाते हैं, वह एक नई शुरुआत करती है, वह स्वयं में एक नई शुरुआत है क्योंकि उनके जीवन इतिहास में हम मानव पीढ़ी को पीढ़ी के नायक स्वरूप नहीं पाते बल्कि इसके नायक स्वयं ईश्वर होते हैं। यह हमारे लिए स्पष्ट रूप से क्रिया से उत्पन्न हुए में प्रकट होता है। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। यीशु दाऊद का पुत्र है जो यूसुफ के उस राजवंश में शामिल किया गया और वह इसराइल का मुक्तिदाता बना, लेकिन वह इब्राहिम और विदेशी महिलाओं का भी पुत्र है, अतः वे गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Figlio di Dio consacrato al Padre con la missione di rivelare il suo volto entra nel mondo come tutti i figli dell'uomo.
ईश्वर का पुत्र जो पिता की प्रेरिताई में उनके चेहरे को प्रकट करने हेतु दुनिया में मानव संतान की भांति प्रवेश करते हैं, यहाँ तक कि नाजरेत में उसे यूसुफ का पुत्र या बढ़ई का बेटा कहा जाता है। वे सच्चे ईश्वर और सच्चे मानव हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपने में कृतज्ञता पूर्ण हृदय से अपने पूर्वजों की याद करें। उससे भी बढ़कर हम ईश्वर को धन्यवाद दें जो माता कलिस्सा के माध्यम हमें अनंत जीवन की सौगात यीशु ख्रिस्त के जीवन में प्रदान किया है जो हमारी आशा है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domino Covisco,
et conspiritum
tuo, sit nomen Domini benedictum,
et omnumque tusco in
cerum, et uli nostrum in nomine Domini,
quid feci in celum et terra,
vi benedica Dio onnipotente, Padre, Amen.
Yeah. भरपूर है हे प्रभु जी।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने चक्रवात चीडो के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की, जिसके कारण हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है, और पोलिश तीर्थ यात्रियों से इस क्रिसमस पर यूक्रेनी शरणार्थियों को याद करने के लिए कहा। बुधवारीय आम दर्शन समारोह के दौरान फ्रेंच भाषा बोलने वाले विश्वासियों को अपने अभिवादन में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि वे फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोट में हाल ही में आए चक्रवात के पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शनिवार को मायोट में चक्रवात चीडो आया, जिसके कारण व्यापक विनाश हुआ और हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। आम सभा में संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना की कि ईश्वर उन लोगों को शांति प्रदान करे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जरूरतमंदों को आवश्यक सहायता प्रदान करें और प्रभावित परिवारों को सांत्वना दे। इस बीच इतालवी भाषा बोलने वालों को अपने अभिवादन में संत पापा ने युद्ध क्षेत्रों में शांति के लिए प्रार्थना की, जैसा कि वे लगभग हर एक आम सभा में करते हैं। संत पापा ने आग्रह किया, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करें, आइए हम उन लोगों को न भूलें जो युद्ध से पीड़ित हैं, फिलिस्तीन, इजरायल और वे सभी जो यूक्रेन में म्यांमार में पीड़ित हैं। आइए हम शांति के राजकुमार प्रभु से यह अनुग्रह मांगे, शांति दुनिया में शांति। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, युद्ध हमेशा हार होती है। पोलैंड के तीर्थ यात्रियों से बात करते हुए संत पापा ने देश में यूक्रेनी शरणार्थियों की देखभाल करने की अपील की। संत पापा ने कहा, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आप ओपलाटिक क्रिसमस की रोटी तोड़ेंगे। दान, शांति और क्षमा का यह इशारा आपके रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों के लिए खुले दिल की अभिव्यक्ति हो। कृपया सबसे ऊपर गरीबों, अकेले लोगों, बाढ़ पीड़ितों और यूक्रेन के हमारे भाई बहनों को याद रखना जारी रखें। और संत पापा फ्रांसिस ने रोम में युवा लोगों को संदेश भेजा और कहा कि उनमें से हर कोई दुनिया में कुछ नया ला सकता है। इतालवी ख्रिस्तीय कर्मचारी संघ ACLI की रोमन शाखा ने मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य छात्रों को काम की दुनिया से परिचित कराना था। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने छात्रों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया आपके सामने खुल रही है। आपके आने पर यह भीड़ भाड़ और विचलित लग सकता है, लेकिन इसमें आपके योगदान की कमी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया में कुछ नया लेकर आते हैं। आपके साथ सब कुछ, वास्तव में सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद संत पापा ने हृदय पर विचार किया जो उनके हालिया विश्व पत्र डेलेक्सित नोस का विषय है और पूछा कि आज श्रमिकों के लिए इस अवधारणा का क्या अर्थ हो सकता है। संत पापा ने कहा, आमतौर पर हम हृदय को प्रेम और मित्रता से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम हृदय को काम पर भी साथ लेकर चलते हैं। बाइबल के अनुसार हृदय निर्णय लेने का स्थान है, इसकी रक्षा करें। संत पापा ने आगे कहा, मैं यह आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप काम की दुनिया में प्रवेश करते हैं, आप शायद इस बात से अभिभूत हो जाते हैं कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। संत पापा ने आग्रह किया, इन परिस्थितियों में शांति और स्वतंत्र रहने के लिए अपने हृदय की रक्षा करना सीखें। ऐसी मांगों के आगे न झुकें जो आपको अपमानित करती है और आपको असहज बनाती है। आगे बढ़ने के तरीकों और ऐसी मांगों के आगे न झुकें जो आपकी वास्तविकता को कमजोर करती है। संत पापा ने आग्रह किया, सामाजिक प्रतिष्ठा या अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए उन मॉडलों का अनुसरण न करें जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं। बुराई हमें अलग थलग कर देती है, यह हमारे सपनों को खत्म कर देती है, यह हमें अकेला और निराश कर देती है। और संत पापा ने अपने संदेश को छात्रों को एक साथ काम करने और नेटवर्क बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए समाप्त किया, ताकि हमारे आम घर का पुनर्निर्माण किया जा सके और मानव बंधुत्व के नेटवर्क को फिर से बुना जा सके। और अपने 88वें जन्मदिन के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने अपनी आत्मकथा आशा के कई अंश जारी किए हैं, जो जनवरी में बुक शेल्फ पर आ जाएगी, जिसमें बोइनस आयरस में उनके बचपन और 2021 में इराक की उनकी यात्रा की रसद संबंधी कठिनाइयों का वर्णन है। बोइनस आयरस में झुग्गियों में अनुभव की गई मानवता की एकाग्रता और 2021 में इराक में अनुभव की गई दिल पर तीर संत पापा फ्रांसिस की आत्मकथा आशा का केंद्रीय विषय है, जिसे कार्लो मूसो के साथ लिखा है। मोंडाडोरी नामक एक इतालवी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक 14 जनवरी को 100 से अधिक देशों में जारी की जाएगी। 17 दिसंबर को संत पापा के 88वें जन्मदिन पर दो इतालवी समाचार पत्रों ला रिपब्लिका और एल कोरियेरे देल्ला सेरा ने कुछ अंश प्रकाशित किया। उधर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख ने रिपोर्ट की है कि गाजा में कथित तौर पर 14,500 से अधिक युवा मारे गए हैं, जबकि गाजा अधिकारियों के अनुसार कुल मौतों की संख्या 45,000 से अधिक हो गई है। मानवीय एजेंसियां पीड़ितों की देखभाल करने और अत्यंत आवश्यक खाद्य सहायता वितरित करने के लिए युद्ध विराम की अपील करना जारी रखा है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बताया कि 16 दिसंबर की रात को बिना किसी चेतावनी के किए गए हमले में 13 लोग मारे गए और 48 घायल हो गए। पीड़ितों में कई बच्चे भी शामिल हैं। मानवीय एजेंसियों ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में हाल ही में हुए घातक हवाई हमलों की निंदा की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के स्कूल को आश्रय स्थल में बदलना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों में से कुछ को 7 या 8 बार जबरन विस्थापित किया गया था। इसके बाद वे इस स्कूल में पहुंचे जिस पर बमबारी की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति बहुत निराशाजनक लगती है। गाजा में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।